इब्रानियों अध्याय 7। इस शालेम के राजा मलकी सिदिक ने, जो परम प्रधान परमेश्वर के लिए सदा के लिए पुरोहित है, अब्राहम से भेंट करके उस समय उसे आशीष दी जब वह राजाओं को मारकर लौट रहा था। इसी को अब्राहम ने सब वस्तुओं का दसवां अंश भी दिया। यह पहले अपने नाम के अर्थ के अनुसार धार्मिकता का राजा और फिर शालेम अर्थात शांति का राजा है। इसका ना पिता ना माता ना वंशावली है, ना ही इसके जीवन की शुरुआत है और ना ही जीवन का अंत है। फिर भी परमेश्वर के बेटे के स्वरूप में ठहराए जाने के कारण वह निरंतर पुरोहित बना रहता है। इस पर ध्यान करो कि वह कैसा महान था, जिसको कुल पिता अब्राहम ने अपनी अच्छी से अच्छी लूट के माल का दसवां अंश दिया। लेवी की संतान में से जो पुरोहित का पद पाते हैं, उन्हें आज्ञा मिली थी कि लोगों अर्थात अपने भाइयों से, हालांकि वे अब्राहम ही की देह से जन्मे थे, व्यवस्था के अनुसार दसवां भाग लें। लेकिन उसने, जो उनकी वंशावली में भी ना था, अब्राहम से दसवां अंश लिया और उसे प्रतिज्ञाएं मिली थीं, उसे आशीष दी। इसमें संदेह नहीं कि छोटा बड़े से आशीष पाता है। यहां तो मरणहार मनुष्य दसवां अंश लेते हैं, परंतु वहां वही दसवां भाग लेता है जिसकी गवाही दी जाती है कि वह जीवित है। तो हम यह भी कह सकते हैं कि लेवी ने भी, जो दसवां अंश लेता है, अब्राहम में होकर दसवां हिस्सा दिया, क्योंकि जिस समय मलकी सिदिक ने लेवी के पिता से मुलाकात की, उस समय वह अपने पिता की देह में था। तब यदि लेवीय पुरोहित पद के द्वारा सिद्धता हो सकती है, तो फिर क्या जरूरत थी कि दूसरा पुरोहित मलकी सिदिक की तरह खड़ा हो और हारून की रीति का ना कहलाए। क्योंकि जब पुरोहितपन बदला गया है, तो व्यवस्था का भी बदलना अवश्य है। क्योंकि जिसके विषय में ये बातें कही जाती हैं कि वे दूसरे गोत्र का है, जिसमें से किसी ने वेदी की सेवा नहीं की, तो साफ है कि हमारा प्रभु यहूदा के गोत्र में से उदय हुआ है। और इसी गोत्र के विषय में मूसा ने पुरोहितपन की कुछ चर्चा नहीं की। यह बात और भी स्पष्ट हो जाती है, क्योंकि मलकी सिदिक के समान एक और ऐसा पुरोहित उत्पन्न होने वाला था, जो शारीरिक आज्ञा की व्यवस्था के अनुसार नहीं, परंतु अविनाशी जीवन की सामर्थ्य के अनुसार ठहराया गया। तो हमारा दावा और भी साफ तरीके से प्रकट हो गया, क्योंकि उसके विषय में यह गवाही दी गई है कि
तुम मलकी सिदिक की तरह युगान युग पुरोहित हो।
क्योंकि पहली आज्ञा कमजोर और निष्फल होने के कारण खत्म हो गई, इसलिए कि यहूदी नियमों ने किसी बात को सिद्धता प्रदान नहीं की और उसके स्थान पर एक ऐसी उत्तम आशीष रखी गई है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के समीप जा सकते हैं। और इसलिए कि मसीह की नियुक्ति बिना शपथ नहीं हुई, वो लोग तो बिना शपथ पुरोहित ठहराए गए, परंतु यह शपथ के साथ उसकी ओर से नियुक्त किया गया, जिसने उनके बारे में कहा कि
प्रभु ने शपथ खाई और वह उससे फिर न पछताएंगे कि युगान युग पुरोहित हैं।
यीशु एक उत्तम वाचा के जामिन ठहरे। बहुत से पुरोहित बनते आए थे, इसका कारण यह था कि मौत उन्हें रहने नहीं देती थी, लेकिन यह युगान युग हैं, इस कारण यीशु का पुरोहितपन अटल है। इसलिए जो उनके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकते हैं, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने के लिए हमेशा जीवित हैं। इसलिए ऐसा ही महायाजक या पुरोहित हमारे योग्य था, जो पवित्र, निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया गया हो, और उन महापुरोहितों के समान उन्हें आवश्यक नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने अपराधों और फिर लोगों के अपराधों के लिए बलिदान चढ़ाएं, क्योंकि यीशु ने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार निपटा दिया। क्योंकि नियम शास्त्र तो कमजोर मनुष्यों को महापुरोहित नियुक्त करता है, परंतु उस शपथ का वचन जो नियम शास्त्र के बाद खाया गया उस बेटे को नियुक्त करता है जो युगान युग के लिए सिद्ध किए गए हैं।